राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 15 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे भीनाशर में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता माया है कि फले सकतो निबध्यते, फल में आसक्ति रखने वाला बन जाता है। साधन करने वाले भाइयों से कहना है कि इसे क्या मिलेगा, साधन करेंगे भजन करेंगे क्या फल मिलेगा, सत्संग करने से क्या फल मिलेगा, ये भगवान तो मिले ही नहीं, तत्व ज्ञान तो हुआ ही नहीं, इसे क्या हो जाएगा, ऐसे फल की इच्छा रखते हैं, वे जल्दी उन्नति नहीं कर सकते। गीता में तो कहा है उन्नति क्या फल शब्दों नहीं बचते बन जाता है, तो फिर साधन काम का कसौटी करें, किसके विचार करें। साधन का तात्पर्य असाधन का नाश करना, साधन विरुद्ध चीज है उसका नाश करना, ये देखना चाहिए। पदार्थों में आसक्ति है, व्यक्तियों में आसक्ति है, परिस्थिति में आसक्ति है, इसी जो चाहना होती है ना, अमुक चीज मिल जाए, अमुक ऐसा आफत मिट जाए, ऐसी जो इच्छा है अमुक परिस्थिति बन जाए तो ठीक रहे, एकांत कुटिया हो, एकांत समय मिल जाए, काम धंधा नहीं हो ऐसा समय मिल जाए, खाली समय मिल जाए, ये जो इच्छा है ना, ये इच्छाएं है वो खास इच्छा राग मिट जाए, देश मिट जाए, ये चीज है। राग मिट गया तो फल कोई कम नहीं हुआ है, आसक्ति मिट गई, पक्षपात मिट गया, मोह मिट गया, तो ये फल कम नहीं है, बहुत बड़ा भारी फल है। परंतु इस तरफ ख्याल कम करते हैं, भगवान मिल जाए, प्रेम हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, तो इसकी आवश्यकता नहीं है इतनी। फले सुख तो निबध जाते, ईश्वर दृष्टि रही तो बनेगा, वो मुक्त नहीं होगा। मगर राग द्वेष हर्ष शोक ये जो मन में विकार होते हैं, ये कितने हुए, ये साधन है, तो ये असाधन का नाश, राग द्वेष न हो, ये असाधन है राग द्वेष। इस दृष्टि रखना बहुत बढ़िया चीज है, किसी परिस्थिति पर रखना ये ठीक, परिस्थिति साधन है, साध्य नहीं है। तो साधन में आवश्यकता है साधन विरुद्ध का नाश करना, साधन की इतनी आवश्यकता नहीं है, असाधन नाश करने की जरूरत है। असाधन नाश करने पर साधन स्वतः होता है, में राग है वो कितना निवृत्त हुआ है, ये देखना है। कामना कितनी नष्ट हुई है, क्रोध कितना नष्ट हुआ है, ईर्ष्या कितनी नष्ट हुई है, ये असहिष्णुता जो हम परिचित वो सह नहीं सकते, ये कितनी नष्ट हुई है, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इनकी तरफ ध्यान देने से साधन ठीक होता है, तो साधन को ठीक बनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। फल ही नहीं, फल आपसे आप हो जाएगा, और ये फल कम थोड़ा ही है। कामना नष्ट हुई, राग नष्ट हुआ, आसक्ति नष्ट हुई, क्रोध नष्ट हुआ, ईर्ष्या नष्ट हुई, द्वेष नष्ट हुआ, तो ये काम कम नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। तो इस तरफ ख्याल रखना चाहिए, ये अगर नाश नहीं हुआ तो क्या किया, साधन करके क्या किया, फिर जब ये नष्ट नहीं हुए, आसक्ति कम नहीं हुई, विकार कम नहीं हुए, तो क्या किया। तो ये असाधन है, इनका नाश करना पहले बहुत आवश्यकता है। खेती करने वाले पहले जो विरुद्ध जितने है बीच में, कई ऊंखड़ा है, कई पूतिया है, कई तरह का घास है, मैं दूर कर खेत को साफ करो, फिर तो खेती होगी ना। तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता है, उसको सूर कहते हैं, सूर करो, सूर असूर करके सूर करे, तो सूर पहले करना पड़ेगा। तो असाधन तो नाश पहले करो, खेती की विरुद्ध बात है तेरी, तो साधन की विरुद्ध बात है उनका नाश करना, ये है साधन, असाधन का नाश करना। तो फिर साधन आप साध्य तो शुद्ध प्राप्त हो जाएगा, साध्य तो सिद्ध है, तथा है वो तो मिलेगा। तो असाधन के नाश पर दृष्टि लेनी चाहिए, राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, पागल है, दम्भ है, दिखावतीपन है, लोगों में अच्छे कराने का मन है, आदर का मन है, ये बाधक है, ये प्रशंसा का मन है, ये साध्य नहीं है। आदर हो गया तो साध्य थोड़ा ही है, महिमा हो गई थी वो साध्य थोड़ा ही है, इनमें राजी होना ये तो असाधन है, और ये वो भी क्या हो गया। तो ये असाधन मिट जाए ये बात होनी चाहिए। साध्य तत्व ज्ञान है, प्रेम है परमात्मा का, भगवान का दर्शन है, इसकी इच्छा रखने से आदमी का साधन तेज नहीं बढ़ता, तेज बढ़ता असाधन का नाश करने से। फिर साधन स्वतः होगा, करना साधन नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक होगा वो साधन तेज होगा, किया जाएगा साधन वो नकली होगा, किया जाता है वो नकली होता है, होता है वो असली होता है। तो साधन होने लगे ऐसा विचार करना चाहिए, साधन होने लगे तो होने लगेगा, कब असाधन मिटेगा तो साधन होने लगेगा। और कामना मिटेगी निष्काम भाव का, निष्काम से सिद्धि योग की सिद्धि हो जाएगी। तो जो कामना होती है भोगों में ये बड़ा भारी असाधन है, मन के द्रुत होते जागरूक होता है, क्रोध आता है, ये बड़ा असाधन है, ये असाधन मिटना चाहिए। साधकों का ध्यान असाधन मिटाने पर रहना चाहिए, असाधन मिटने से साधन स्वतः सिद्ध होगा, स्वाभाविक। योग स्वाभाविक है, प्रेम स्वाभाविक है, बोध स्वाभाविक है, ये अस्वाभाविक है असाधन, इनको मिटाना है, इस पर ध्यान देना चाहिए हरेक साधक को। इतने साधन साधन करते हुए भगवान के दर्शन किसको हो गए, कितने आदमियों को हुए, ये प्रश्न वास्तव में नहीं साधन करने वालों का है, साधन करने वालों को ये साधन ये नहीं होता प्रश्न। असाधन कितना दूर हुआ ये है साधन, साधक का प्रश्न ये है, कामना कितनी मिटी, क्रोध कितना मिटा, द्वेष कितना मिटा, विषमता कितनी मिटी, पक्षपात कितना मिटा, ये असाधन मिटाना है, ये खास साधकों का काम है। हरेक के साथ हमारा कैसा बर्ताव होता है, उसके हित का होता है कि अपने स्वार्थ का होता है, अपनी कामना का, अपनी बढ़ाई का, अपने मान का ध्यान होता है कि उसके साधक का ध्यान होता है, साधन से कैसे बने, कैसे ही परमात्मा की प्राप्ति कर ली, इसका असाधन कैसे मिट जाए, ये ध्यान होना चाहिए। अपना मान बढ़ाई ईर्ष्या आदि जिसने जो होता वो असाधन है, तो ये असाधन मिटे, पक्षपात मिटे, विषम भाव मिटे, दूसरों पर जो गुस्सा आता है, दूसरे बुरे लगते हैं, ये हमारा असाधन है। सब जन ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, तो ईश्वर रूप कैसे दिखेगा, जब तक आदमी बुरा दिखता है, ये खराब आदमी है, ये ठीक नहीं है, ये बेठीक कर रहा है, इस पर दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। ये ठीक करने लग जाए, इनका असाधन दूर हो जाए, पक्षपात दूर हो जाए, दूसरों का भी हमारा भी, तो उसे हमारा और दूसरों का कल्याण है। तो साधन ठीक रहे तो असाधन न रहे हमारे, हमारे भीतर किसी क्रिया, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु पर जो द्वेष होता है, किसी पर राग होता है, किसी व्यक्ति व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी परिस्थिति पर, किसी घटना पर जो राग है, द्वेष है, ये हमारे असाधन है। ये असाधन दूर हो तो फिर साधन हो जाएगा, फिर साधन स्वतः होगा, स्वाभाविक साधन, स्वाभाविक साधन से ही सिद्धि होती है, और स्वाभाविक साधन असाधन के मिटने से होगा। असाधन तो मिटाते नहीं, और जो परिस्थिति है वो परिस्थिति याद करते, ऐसी परिस्थिति आए थे एकांत मिल जाए, ऐसी कुटिया मिल जाए, ऐसा भोजन मिल जाए, ऐसा देश काल मिल जाए, ऐसी जनता मिल जाए तो हमारा साधन हो, तो वो साधन हो नहीं सकेगा। वो साधन में तो बाधा स्वयं लगा ली, ऐसी कुटिया नहीं मिलेगी तो साधन नहीं होगा। तो बाहर की चीजें है, ये है, ये भी सोचते हैं कि अच्छी है, ये खास चीज नहीं है। खास तो राग द्वेष मिटाना है, वो कितना मिटा है, किसी व्यक्ति प्रति राग कितना होता है, द्वेष कितना होता है, किसी घटना पर राग कितना होता है, द्वेष कितना होता है, किसी वस्तु पर राग कितना होता है, किसी द्वेष कितना होता है, किसी परिस्थिति पर राग कितना होता है, द्वेष कितना होता है, ये बातें साधक के काम की है। परिस्थिति की पराधीनता है वो साधन नहीं कर सकता। परिस्थिति बदलना अपने हाथ की बात नहीं है, परिस्थिति का उपयोग करना अपने हाथ है। प्रतिकूल परिस्थिति का क्या उपयोग करें, अनुकूल परिस्थिति का क्या उपयोग, उसका सदुपयोग करने से अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों साधन सामग्री है। परिस्थिति अनुकूल में ये भी साधन सामग्री है, परिस्थिति प्रतिकूल में ये भी साधन सामग्री है। ये जो कर्मों का भोग मानते हैं ना, ये वास्तव में जीवन नहीं है, ये मनुष्यता नहीं है। सुखी सुखी रहना, दुखी दुखी रहना, सुख दुख भोगते रहना, ये वास्तव में असाधन है। तो इसका नाश होना चाहिए हरेक परिस्थिति में, पूरे मर्द वही जो हर हाल में खुश है। तो ये असाधन मिटने पर हर हाल में खुश साधन हो जाएगा, आप साफ हो, साधन साधन करना नहीं पड़ेगा, आप साफ होगा असाधन मिटने से। तो विघ्न बाधाएं हैं ये हटने चाहिए। अनुकूल परिस्थिति की इच्छा है ना, ये गलती है। प्रतिकूल परिस्थिति ना आवे ये इच्छा है, ये साधक का काम नहीं है। अनुकूल प्रतिकूल तो आती है, आवेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। अपने सदुपयोग कितना करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग कितना करते हैं, अनुकूल का कितना है, तो क्या है उसका उपयोग क्या है, अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग क्या है। अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग है उपकार करना, दूसरों का हित करना, जैसे धन मिलता है तो धन से दूसरों का हित करना, स्वास्थ्य मिला है अनुकूल परिस्थिति है तो स्वास्थ्य शरीर के द्वारा दूसरों की सेवा करना, अनुकूल परिस्थिति मिली है कि जिसमें आराम मिलता है तो उसमें आराम का त्याग करके सेवा में लगना, प्रतिकूल परिस्थिति है तो अनुकूल की इच्छा का त्याग करना। हमारे गर्मी बहुत लगती है तो सर्दी की इच्छा नहीं करनी, ठंडी की इच्छा नहीं करनी, उद्योग करना दोष नहीं है। गर्मी ज्यादा लगती है तो गर्मी न लगे ऐसा उपाय करना दोष नहीं है, परंतु गर्मी है दोष है परिस्थिति, अरे परिस्थिति है वो सब अनुकूल बना नहीं सकोगे। प्रतिकूल है तो अनुकूल थी इच्छा का त्याग करना है, हमें चाहिए नहीं ऐसा नहीं मिला तो ऐसा हमें चाहिए ही नहीं। जो परिस्थिति मिले वो साधन सामग्री है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य शरीर साधनों का धाम है। तो साधन धाम तब हो जब असाधन मिटे। परिस्थिति में, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, घटना में, क्रिया में जो अनुकूलता प्रतिकूलता है उसका जो असर होता है, राग द्वेष होते हैं, शोक होते हैं, ये असाधन है, ये मिटना चाहिए। परमात्मा प्राप्ति फिर देख लेंगे जो होगा, अरे वो तो स्वतः है, प्राप्त है प्राप्त हो जाएगा, असाधन है ये पता लेने वाली है। तो असाधन का नाश करना है, ये खास साधक का काम है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रतिकूल जब वायु देश आदि हो तो प्रतिकूल में रहना है, अनुकूल नहीं करना है, हो सके जितना अनुकूल करो, परंतु परिस्थिति को आप शुद्ध नहीं बना सकते, अनुकूल बना ही नहीं सकते। परिस्थिति सबके दूर आई है, राम जी के जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आई है, ये परिस्थिति तो आवेगी। दशरथ जी के जीवन में भी अनुकूलता प्रतिकूलता आई है, अवतारों की भी आई है, संत महात्माओं की अनुकूलता प्रतिकूलता आई है। ये प्रतिकूल परिस्थिति मिट जाए, अनुकूलता आ जाए, ये इसमें ही लोग प्राय लगे हुए हैं, ये साधन नहीं है। परिस्थिति का सदुपयोग साधन है। जो परिस्थिति मिली उसमें साधन कैसे बनता है? जो एकांत में साधन करता है वो समुदाय में साधन नहीं कर सकता, और समुदाय में साधन करता है वो एकांत में साधन कर लेगा। एकांत इतनी बढ़िया चीज नहीं है जितना असाधन मिटाएगा। अब राग द्वेष मिट गए तो कहीं जाएगा, साधन हो जाएगा उसका। असाधन है वो मिटाना है। साधन विरुद्ध जो हमारी प्रवृत्ति होती है, झूठ है, कपट है, बेईमानी है, जालसाजी है, द्वेष है, विश्वासघात है, ये बड़े महान भयंकर असाधन है विश्वासघात करना। तो ये तो मिटा ही नहीं, असत्य बोलना मिटा ही नहीं। तो असत्य बोलना कितना मिट गया हमारा, ये ध्यान देना है, क्योंकि वो असाधन है, साधन से विरुद्ध कार्य है। असाधन मिटे बिना साधन निरंतर नहीं होता, निरंतर साधन बिना सिद्धि नहीं होती। तस्मात आसक्त सत्यं कार्यं करो, आसक्ति रही तो सत्यं कार्यं, निरंतर कार्य कर दो, अकार्य न हो कभी भी। न करने लायक काम न करो तो करने लायक काम होने लगेगा। शास्त्र विरुद्ध मत करो तो शास्त्र वेद काम होने लगेगा। किसी का नुकसान मत करो तो दूसरे की सेवा होने लगेगी। नुकसान न करना ये विचार पक्का हो जाएगा तो साधन से सेवा करना वो सिद्ध हो गया, स्वतः होने लगेगी। किसी से द्वेष है ये हमारा असाधन है, तो असाधन को दूर करो। ये खास बात है साधकों के लिए, विशेष ध्यान देने की बात है। परिस्थिति अनुकूल तो प्रतिकूल तो आवेगी, तो आवेगी। ये तो संसार है, संसार नाम इसी का है जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति है, इसका नाम संसार है। ये तो आवेगी, इस वास्ते अनुकूल परिस्थिति बना लो, प्रवृत्ति मिटा लो। इसमें उद्योग करना है समय और बुद्धि, इनको खराब करना है। साधारण बने से ठीक है, रहन सहन ठीक कर लिया अपना। अब दुखदायी परिस्थिति है, दूध सुखदायी परिस्थिति है, धनवत्ता होगी, निर्धनता होगी, रोगी हो गया, निरोग हो गया, सही। ये हाथ की बात नहीं, रोग था कर ही लें, रोगों को मिटा ही लें। सब तरह की अनुकूल परिस्थिति हो जाए। प्रतिकूल परिस्थिति में साधन कैसे बन सकता है, भगवान का भजन कैसे हो सकता है, ये करो आप। तो अपने पास बल है, बुद्धि है, योग्यता है, पदार्थ है, धर्म है, धन है आदि पदार्थ, इनके द्वारा दूसरों को उपकार करो। अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल सेवा के लिए अनुकूलता है, भोग के लिए नहीं है। अनुकूलता भोग तो पशु कहते हैं, पक्षी भी करते हैं, जड़ से जड़ कुत्ता है, गधा है, गधा सुअर है, ये भी अनुकूलता में राजी होते हैं। उसी में राजी हुए तो भाई मनुष्य राजी क्या हुआ? विशुद्ध भोग योनि है, तो ये भोग योनि राजी नादारी होना ही अपना काम मानोगे, ये जीवन मानोगे, तो मनुष्य योनि है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सिद्ध होगा ही नहीं, ये भोग योनि हो गई। शुद्ध हम राजी नाराजी हो गए, तो इनका उपयोग करो। कैसे किस उपयोग किया जाए, ऐसी परिस्थिति में कैसे साधन किया जाए, ऐसे सोचो। तो असाधन का नाश करना ये हर एक के लिए बहुत ही आवश्यक है। खेती करने वालों खेत साफ करना बहुत आवश्यक है। साफ नहीं करो कहाँ होगी खेती, कैसे होगी? इस बार त्याग से भगवत प्राप्ति में सबसे पहले निषिद्ध कर्मों का त्याग होता है। निषिद्ध कर्म असाधन है, वृद्ध है, विरुद्ध बात है। पहली सेना त्याग है, जो ऊट का पहाड़ी सावधारी बेईमानी अभक्ष भक्षण आदि जो शासन कर्म है, वो शरीर से वाणी से मन से किसी से न करना, ये पहली सेना का त्याग है। तो पहली सेना का त्याग असाधनों का त्याग यही है। इस वास्ते साधन को चाहिए इस पर ध्यान दें। इन मुद्दों लोगों ने अपना आवश्यक समझ लिया, झूठ कपट बिना आज व्यवहार नहीं होगा। तो झूठ कपट तो आवश्यक है हमारे, अब ये आवश्यक तो साधन कैसे करोगे? इन असाधनों से कैसे बचें? हृदय में राग द्वेष न हो, हर रोग न हो, न प्रीति प्रेम प्राप्त नोदाप्रियम वो स्थिर बुद्धि संबोधो वो स्थिर बुद्धि होगा राग द्वेष रहते तो ये रहने होते रहते वो स्थिर बुद्धि कैसे होंगे क्षमता कैसे आवेगी सफतुम योग थे क्षमता का नाम योग है गीता में यही विलक्षण बात थी हरेक कार्य करते हुए हर्षो मत करो राग द्वेष मत करो पक्षपात मत करो ठीक कर्तव्य का पालन करो सबके हित का विचार करो सबके कल्याण ये विचार रखो सबका कल्याण कैसे हो ये विचार रखो तो ये आवश्यकता है असाधन के दूर करने की फिर साधन आवश्यक होगा इसमें कोई शंका हो तो बोलो साधन सामग्री तो बड़ी भारी है प्रतिकूल साधन सामग्री जितनी अनुकूलता है नहीं प्रतिकूल परिस्थिति में पाप का नाश होता है तो पाप रहना चाहिए कि नाश होना चाहिए तो वो तो तप मानो उसको तपस्या करना क्या है आप तप करना अनुकूलता है क्या पंचाग्नि तप है कोई चार अग्नि ताप करके सूर्य की ताप से है बैसाख के महीने तो ये अनुकूलता है क्या तो अनुकूलता प्रतिकूलता है उपवास करे तो क्या भगवान ना अनुकूलता है क्या तपस्या है वो तपस्या आपकी मन घड़न है आप प्रतिकूलता में प्रसन्न होना है ये भगवान की दी हुई प्रसन्न तपस्या है ये बढ़िया साधन है प्रतिकूलता जितना साधन है उतना अनुकूल साधन नहीं होता उतना अगाड़ी पाप न करने में सावधानी होती है पुराने पापों का नाश होता है प्रतिकूल परिस्थिति में बोलो पुराने पाप को तो नाश होता है और अगाड़ी पाप मत हो भाई ऐसा दंड भोगना पड़ेगा फिर तो बड़ा बड़ा साधन है प्रतिकूल साधन मानना चाहिए हमारे पाप नाश करके हमारो अगाड़ी बढ़ाने के लिए भगवान दिए बोलो सहन तो हो जाएगी आप चालू सहन हो जाएगा सहन कैसे नहीं होती है खेती करने वाले अनुकूलता इतना हो तो खेती कैसे करेंगे काम में नहीं जाओ तावरे में नहीं जाओ तो कैसे खेती होगी मेहनत नहीं करी खेती कैसे होगी आराम से खेती हो जाएगी क्या ना चाह ना प्रतिकूलता नहीं करनी कि मर जाओगे दुख आ जाए असंताप आ जाए चाह ना अनुकूलता ही करनी ना प्रतिकूलता ही करनी आज आए उसे प्रसन्न रहना अनुकूलता प्रसन्न प्रतिकूलता प्रसन्न चाहना प्रतिकूलता ही कोई नहीं करनी करता ही नहीं कोई चाहना अनुकूलता ही करते हैं अनुकूलता की चाहना ना करते प्रतिकूलता से द्वेष नहीं करते तो साधन हो जाएगा प्रतिकूलता से द्वेष ना करे अनुकूलता में राग ना करे तो साधन हो जाएगा युद्ध नहीं मिटेंगे नाम लिया तो क्या भया सिमरन भागा तेज हरिया ज्ञान विचार बिन रही जेद की जेद जो राम नाम के खास आचार्य को कहते हैं रामस्ने संप्रदाय की आचार्य खास राम नाम पर जोर लगाने वाले भी कहते हैं नाम लिया तो क्या भगा तेज अब राग द्वेष नहीं मिटेगा अगर अंधेरा नहीं मिटा तो क्या हुआ ज्ञान विचार बिन रही जेद की जेद जेद लगेगी हो जाएगा नहीं अब भी मिटाना चाहिए राग द्वेष तो मिटाए इंद्रिय से आते रागत द्वेष तो ये से प्रतिबंध है शत्रु तो राग द्वेष दो है इस पर और ना सही राग द्वेष पर विचार ना